ಕೀರ್ತನ್ ಕೀರ್ತನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಲೆಕ್ಚರ್.
ಕೃಷ್ಣಪ್ರಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಇತಿ ನಾಮಿನೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೇ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ. ನಮೋ ಮಹಾವದಾನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮಕರಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೇ ಗೌರವಿಸೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೇ ಸೋಯಂ ರೂಪಃ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಿತಂ. ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗೇಶ
ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ
ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವಿ
ಪ್ರಣಾಮಿ ಹರಿ ಪ್ರಿಯೇ.
ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ
ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯೇವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ.
ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಗೌರ.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ.
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ.
ಓಂ
ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ವಾಸುದೇವಾಯ.
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ.
ನೂನಂ ಹ್ಯದೃಷ್ಟ ನೂನಂ ಹಿ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಷ್ಠಃ ಅಯಂ. ನೂನಂ ಹ್ಯದೃಷ್ಟ ನಿಷ್ಠೋಯಂ ಅದೃಷ್ಟ ಪರಮೋ ಜನಃ. ಅದೃಷ್ಟಂ ಆತ್ಮನಸ್ತತ್ವಂ ಅದೃಷ್ಟಮಾತ್ಮನಸ್ತತ್ವಂ ಯೋ ವೇದ ನ ಸಮುಹ್ಯತಿ. ನೂನಂ ಹ್ಯದೃಷ್ಟ ನಿಷ್ಠೋಯಂ ಅದೃಷ್ಟ ಪರಮೋ ಜನಃ ಅದೃಷ್ಟಮಾತ್ಮನಸ್ತತ್ವಂ ಯೋ ವೇದ ನ ಸಮುಹ್ಯತಿ. ನೂನಂ ಹ್ಯದೃಷ್ಟ ನಿಷ್ಠೋಯಂ ಅದೃಷ್ಟ ಪರಮೋ ಜನಃ ಅದೃಷ್ಟಮಾತ್ಮನಸ್ತತ್ವಂ ಯೋ ವೇದ ನ ಸಮುಹ್ಯತಿ.
ಅದೃಷ್ಟ ಪರಮೋ ಜನಃ.
यह पांचवा अध्याय है दशम स्कंध का, उसका नाम है वसुदेव नंद समागमन। वसुदेव जी और नंद महाराज का समागम हुआ, मथुरा में भेंट हुई। तो श्री वसुदेव जी ने क्या कहा और श्री नंद बाबा ने क्या कहा, इसका वर्णन है। यह श्लोक जो बोला गया है नंद महाराज के द्वारा, श्री नंद महाराज कहते हैं नूनम यदृष्ट निष्ठोयम। नूनम का अर्थ निश्चित, कोई संदेह नहीं है। यह जन जो जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ है जीव, यह अदृष्ट के अधीन है। अदृष्ट निष्ठ, निष्ठ का अर्थ है अस्थित। अदृष्ट का क्या मतलब है? अदृष्ट का मतलब है जिसको देखा नहीं जा रहा है, अर्थात दैव। उसको स्पष्ट शब्द में कहते हैं अपना कर्म फल, प्रारब्ध जो होने वाला है। हम सभी लोग अदृष्ट के अधीन हैं। अभी कहीं चल रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ये अदृष्ट के द्वारा हम लोग कंट्रोल्ड हैं। अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सब कुछ हो रहा है। अदृष्ट परमो जन, प्रत्येक मनुष्य जीव का सुप्रीम कारण है अदृष्ट, अपना कर्म फल। तो वसुदेव जी को वे कह रहे हैं कि पहले कहे कि देवकी के बहुत पुत्रों को कंस मार दिया और एक छोटी बेटी हुई थी वो भी आकाश में उड़ गई, स्वर्ग चली गई। योग निद्रा जो अंत में हुई थी वो भी बेचारी हाथ से उड़ करके भाग गई। ये बहुत दुख की बात है ना। वसुदेव जी को समझा रहे हैं, पहले तो 6 पुत्रों को मार दिया कंस एक एक करके, और 7वां पुत्र का पता ही नहीं चला कहाँ चला गया, और एक बेटा हुआ 8वें नंबर में, तो उसको श्री वसुदेव जी ने भगवान की आज्ञा से घर से बाहर, मथुरा से बाहर बहुत बड़े वन में, जंगल में पहुंचा दिया नंद महाराज के घर। लेकिन इस बात को वे कहते नहीं हैं, नंद बाबा को पता नहीं है कि वसुदेव जी उस लड़के को लाकर हमारे घर रख दिए। वसुदेव जी उसको खोलना भी नहीं चाहते हैं। नंद महाराज तो यही मानते हैं कि हमको पुत्र हुआ है, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, वो सब समय यही माने, कभी नहीं मानते हैं कि ये वसुदेव जी का बेटा है, मेरा बेटा है। तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि कोई वसुदेव जी का पुत्र कहे। तो वसुदेव जी भी इस बात को हमेशा छिपा करते रहते, और नंद बाबा से बात कर रहे हैं तो उस समय उनकी चेतना क्या है, बुद्धि कहाँ लगी हुई है। तो सुखदेव जी कहते हैं, प्रसक्त भी स्वात्मजय, अपने दोनों पुत्रों में बुद्धि आसक्त थी, प्रसक्त वो प्रकर्षण आसक्त, बहुत अधिक आसक्त थी, रात दिन उन्हीं दोनों का चिंतन करते थे। हमारा पुत्र जो रोहिणी से जन्म लिया और देवकी से जो जन्म लिया उसको तो छिपा करके रखे हैं, लेकिन अपने मन में दोनों पुत्रों के प्रति आसक्ति है। नंद महाराज से कहाँ भेंट हुई, मथुरा के लगभग बाहर बगीचे में। क्यों नंद महाराज मथुरा गए थे? कंस को वार्षिक कर देने के लिए, लगान देने के लिए। नंद महाराज वन में रहते थे, पर फिर भी वन में भी टैक्स था सरकार का, कंस का। बहुत गौएं थी नंद महाराज के यहाँ, तो गौएं भी संपत्ति थी ना। नंद महाराज के पास बहुत धन था, खास करके जब कृष्ण का जन्म हुआ तो तत आरभ्य नंद से ब्रज सर्व समृद्धिमान। उस समय से भगवान के जन्म लेने से ब्रज में सर्व समृद्धि छा गई, बहुत धन हो गया, गौएं बहुत सुंदर स्वस्थ बहुत दूध देने वाली हो गई, वृक्ष बड़े सुंदर हरे भरे फलवान हो गए, और गोप गोपी सभी देवता के समान सुंदर हो गए। भगवान के जन्म लेने से हरेर निवासात्म गुणै रमा क्रीड़म, क्योंकि भगवान जन्म लिए थे वहाँ रह रहे थे, इसलिए लक्ष्मी जी आ गई ब्रज में और सारी संपत्ति भर गई, सब तरह दिखाई पड़ता था, सोना हीरा और सभी जीव सुखी हो गए, बहुत अपार धन छा गया। जहाँ कोष में सोने के आभूषण रखे गए थे, डायमंड के आभूषण रखे गए थे, उनमें अपने आप बहुत वृद्धि हो गई। नंद महाराज ने देखा कि हमारा ये पुत्र बड़ा भाग्यशाली है, इसके प्रभाव से संपत्ति छा गई है, तो वे सोचने लगे कि इस समय यदि कोई कंस का आदमी इधर आ जाएगा तो विचार करेगा कि कब से धन बढ़ा है, तो कोई ना कोई कह देगा जब से हमारे लाला का जन्म हुआ है तब से ये धन बढ़ गया है। तब कंस ये विचार करेगा कि हो सकता है कि ये विष्णु हो, वो मारने की चेष्टा करेगा। और यह भी बात है कि नंद बाबा ने सोचा कि वसुदेव जी के साथ हमारी मित्रता है, वे हमारे भाई हैं, तो उस नाते से हमारे बच्चे को मार सकता है, इसलिए उन्होंने सोचा। वे बड़े बुद्धिमान थे, राजा थे ना, तो सोचे कंस का कोई बकाया नहीं रहना चाहिए यहाँ गोकुल में, कोई आदमी इधर आवे ना और आवे तो कुछ भी लेना देना बाकी ना रहे, जो सालाना कर देना पड़ता है वो जा करके चुका दूँ मथुरा, जब दे दूँगा कुछ बाकी नहीं रहेगा तो कोई नहीं आएगा, नहीं तो कोई ना कोई मथुरा से तहसीलदार आएगा और पूछेगा, कहीं अकाउंट नंबर ना देखने लगे। और सर तो अंततः भेद खुल जाएगा कि ये बच्चा भगवान है, विष्णु है, इसीलिए इतने धन की वृद्धि हुई है। इसीलिए नंद बाबा ने सोचा मथुरा में जा कर दे देना चाहिए, कोई आवे ना मथुरा से। तो बैलगाड़ी पर बहुत से हीरा सोना सोने की मुद्राएं पैसा लिए और कुछ गोपों के साथ मथुरा चल दिए। महावन से गोकुल से मथुरा 3 कोस है, 6 माइल लगभग, इस समय 10 किलोमीटर पड़ता है। तो बैलगाड़ी पर सब धन रह करके जो देना था कंस को ले करके गए कुछ गोपों के साथ। गए और सबसे पहले कंस को कर दिए, क्योंकि जोखिम रखना ठीक नहीं था, बैलगाड़ी पर धन रह करके जा रहे हैं, दुष्ट का राज्य है, कहीं भी कोई छीन सकता है, इसलिए पहले कर दिए, ले जमा कर दिए। श्री वसुदेव जी को पता लगा कि हमारे भाई बड़े भाई नंद महाराज आए हैं मथुरा, तबे मिलने के लिए गए। वसुदेव उपश्रुत्य भ्रातरम नंद मागतम राज्ञे दत्त करम ज्ञात्वा जजौ तद अवमोचन। अवमोचन जहाँ वे बैलों को खोले थे, पार्किंग किए थे गाड़ी को, बैलगाड़ी को, वहाँ गए मिलने के लिए। प्रश्न होता है कि वसुदेव जी का घर है मथुरा और अपने बड़े भाई आए हैं, बहुत प्रेम है, तो उनको अपने घर क्यों नहीं बुलाए? नंद बाबा बाहर रुके हुए हैं बगीचा में, तो उनको घर बुलाना चाहिए ना, लेकिन उन्हें नहीं बुलाया। इसका कारण हरि सुई जी बताते हैं कि वसुदेव जी इसलिए नंद बाबा को अपने घर नहीं बुलाए कि वसुदेव जी ने सोचा कि मैं तो पुरुष हूँ, मैं गंभीर हूँ, धैर्य है, लेकिन देवकी तो स्त्री है, कमजोर स्वभाव की, वो कहीं पूछ न दे कि हमारा बेटा कैसा है, जिसको हमारे पति आधी रात को पहुँचाए, वो बेटा कुशल से है ना, कैसे है, अच्छा है ना, कहीं पूछ देगी तो सारी बात बिगड़ जाएगी। वो स्त्री है, स्त्री में धैर्य नहीं होता है, वो कहीं पूछ दे, माँ है ना, तो इसीलिए नंद बाबा को घर बुलाना ठीक नहीं। और देवकी को साथ लेकर भी नहीं गए बगीचा में, वहाँ भी पूछ सकती थी, बहुत सतर्क रहे। तो गए नंद बाबा से मिले, उनको देख करके बहुत प्रसन्नता हुई, उनको बहुत प्रिय हैं नंद महाराज, उनको प्रियतमम कहा गया, दूसरा प्रिय प्रियतमम। दोनों हाथों से आलिंगन किए नंद महाराज का, और यह बात पूछे। वसुदेव जी की आसक्ति थी अपने दोनों पुत्रों में, रोहिणी से जन्मे हुए पुत्र में और देवकी के पुत्र में, जो जिसको पहुंचाए थे, पर दोनों के कुछ नाम नहीं है, तो नाम नहीं पूछ सकते। नाम तो अभी दो चार दिन के बाद रखा जाएगा, जब गर्गाचार्य को भेजेंगे, अभी नाम नहीं है श्री बलराम जी का। तो प्रसक्त भी स्वात्मजयपति, दोनों पुत्रों में उनकी बुद्धि आसक्त थी, दोनों के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए नंद बाबा से यह बात कहे। नंद बाबा से कहते हैं, दृष्टया प्रवयस भ्रात, दृष्टया भ्रात प्रवयस इदानीम प्रजस्यते, प्रजा साया निवृत्तस्य प्रजा जत समपद्यता। बड़े भाग की बात है भैया, आप प्रवयस हो गए हैं और अब तक भी आपको कोई पुत्र नहीं हुआ था। बहुत खुशी की बात है कि अब एक पुत्र आपको हुआ इस प्रवयस अवस्था में, इस वार्धक्य में। नंद बाबा वसुदेव जी से बहुत बड़े थे, उस समय उनको पुत्र प्राप्त हुआ है, और अब तक आपको पुत्र प्राप्त नहीं हुआ था, ये बड़े भाग्य से आपको पुत्र प्राप्त हुआ। तो प्रकारांतर से यह पूछ रहे थे, वो पुत्र ठीक है ना? अंत ये प्रश्न का सार है कि आपको बुढ़ापा में पुत्र हुआ है, वास्तव में पुत्र हुआ नहीं है, वसुदेव जी पुत्र को पहुंचाए हैं, तो समाचार में ऐसे इनडायरेक्ट में पूछ रहे हैं, वो पुत्र ठीक से है ना? कभी कभी जन्म लेने पर बच्चे बीमार हो जाते हैं, सुख से नहीं रहते हैं, तो इसलिए प्रश्न किया जा रहा है। आपको जो पुत्र प्राप्त हुआ वो ठीक से है ना? नंद बाबा भी उस पुत्र के स्मरण में डूबे हुए थे, बड़ी मुश्किल से गोकुल से मथुरा आए थे छोड़ करके, पर आसक्ति तो थी उनकी पूरी कि कुछ बोले नहीं। वसुदेव जी कहते हैं, दृष्ट्या संसार चक्रस्मिन् वर्तमानः पुनर्भवः, उपलब्धो भवान अद्य दुर्लभम प्रिय दर्शनम्। बड़े भाग्य की बात है कि संसार चक्र में फंसे हुए हमको आपसे भेंट हो गई। इस संसार में बहुत दुर्लभ है अपने प्रिय का दर्शन, आपसे भेंट होना बड़े मुश्किल की बात थी, लेकिन भगवान की कृपा से दर्शन हुआ। इस संसार में प्रत्येक जीव अपने कर्म के वश में है, और कर्म कब कहाँ ले जाएगा कोई ठीक नहीं रहता है। अपनी स्त्री, अपना बच्चा, चाहे अपना भाई, कितना भी घनिष्ठ संबंध हो, लेकिन अपने अपने कर्मों के बस में है, उनको अलग होना ही पड़ता है। तो मैं ऐसा हूँ, मेरी स्त्री रोहिणी आपके यहाँ रहती है, मथुरा में नहीं रह पाती है, और मेरी और भी पत्नियाँ इधर उधर रह रही हैं, और मुझे पुत्र को देखने का भी अवसर नहीं मिला। मैं उधर कारागृह में था, ये कहने का मतलब है कंस के कारागृह में था। परंतु अपने विषय में वसुदेव जी नहीं बोल रहे हैं ज़्यादा, नंद बाबा उनके बारे में बोलते हैं। अहो ते देवकी पुत्रा कंसे न बहु होता, अहो कंस के द्वारा देवकी से उत्पन्न आपके बहुत पुत्र मार दिए गए। एकावशिष्टा वरजा अवरजा, बाद में जन्मी हुई एक कन्या बची थी तो वो भी दिवम गता, आकाश में चली गई। ये सब खबर नंद बाबा को मिली है कि एक लड़की हुई थी वसुदेव जी को, वो आकाश में उड़ गई। वो तो माता दुर्गा जी थी, परंतु कोई भी हो वो भी हाथ से गई ना, तो चली गई। बच्चे तो मारे ही गए, एक बच्ची थी वो भी आकाश में उड़ गई। ऐसा दुर्दिन का फेर होता है, ऐसा भाग्य होता है, अपने कर्म का ही फल है ना, ये कह रहे हैं। और अंत में समझाते हैं, कोई बात नहीं, प्रत्येक जीव इस संसार में अदृष्ट के अधीन है। अदृष्ट ही चालक है, अपना अपना कर्म है, कर्म कब कहाँ किसको ले जाएगा कब जन्म देगा, कब मार देगा, कुछ पता नहीं है। इसीलिए कर्म फल को अदृष्ट कहते हैं। अदृष्ट आ मतलब नहीं, दृष्ट में देखा हुआ। हम लोगों का जो कर्म है वो सब मालूम है ब्रह्मा जी को या यमराज जी को, लेकिन हम लोग उसको देख नहीं पाते हैं, इसलिए वो अदृष्ट है। तो अदृष्ट जिसको देखा नहीं जा सकता है वही हमारा मालिक है। उसी के अनुसार जन्म होता है, मृत्यु होती है, मिलन होता है, वियोग होता है। तो यही लिखा था कर्म के अनुसार कि वे बच्चे केवल देवकी के गर्भ तक आपके साथ रहेंगे और उसके बाद मार दिए जाएंगे। एक नहीं बहुवह, एक पुत्र नहीं मारा गया, छः छः पुत्र मारे गए। और एक बच्ची थी वो भी उड़ कर चली गई। कर्म ही लाया था उन बच्चों को और वही वियुक्त कर दिया। जो व्यक्ति जानता है अदृष्ट के तत्व को, कर्म फल के इस विकट स्थिति को, तो वो कभी शोक नहीं करता, मोह में नहीं पड़ता। न मुह्यति, इसका अर्थ न सोचती, वो कभी शोक नहीं करता। इसीलिए हमेशा श्री भगवान का स्मरण करना चाहिए। शोक करके करेंगे क्या? जो होना है हो जाएगा और उसका हमको कुछ पता नहीं है। कब किस कर्म का फल आ जाएगा, कब अपनी पत्नी से दूर हो जाएंगे, अपने बच्चे से दूर हो जाएंगे, कुछ भी पता नहीं। इस रहस्य को जो जानता है कि अदृष्ट अर्थात कर्म फल ही, दैव ही हमको संसार में मचा रहा है, जन्म मृत्यु का कारण है, मिलन और वियोग का कारण ही वही है, तो कभी शोक नहीं करता है। अदृष्टम आत्मनस्तत्वम यो वेदा न समूहयति, न सोचती, वो शोक नहीं करता। नंद महाराज के वचन पर, वाणी पर सरस्वती भी बोल रही है। तो कहते हैं कि आप शोक मत कीजिए, आज आपके पुत्र को देव ने अलग कर दिया, कर्म फल ने अलग कर दिया, तो वो एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप अपने पुत्र के साथ मिलेंगे। 11 वर्ष के बाद जब मथुरा फिर जाएगा, वो इसी मथुरा में आएगा। ये नंद बाबा बोल रहे हैं, परंतु उनको ये भाव नहीं है कि यही बेटा मिलेगा उनको, पर उनकी वाणी पर सरस्वती जी बैठी हैं, वो इस बात को कह रही हैं कि आप चिंता मत कीजिए, वे सभी पुत्र आपको मिलेंगे द्वारका में। जब माता देवकी प्रार्थना करेगी भगवान से। जब भगवान उज्जैन से पढ़ करके आए और गुरु दक्षिणा दे करके आए, गुरु जी ने अपनी पत्नी से परामर्श किया और कहा कि इस बच्चे से, इस छात्र से क्या दक्षिणा मांगनी चाहिए। तो उनकी पत्नी ने कहा, संदीपनी गुरुदेव की पत्नी ने कहा कि ये भगवान है, इनसे अपने मरे हुए पुत्र को मांगे फिर जिला दें। तो गुरु जी ने कहा, बेटा तुम दोनों पढ़े हो, बड़े ध्यान से तुम्हारी विद्या सफल हो, तुम्हारी विद्या कभी भूले नहीं, मैं आशीर्वाद देता हूँ। मैं प्रभास में गया था तीर्थ में, तो समुद्र मेरे पुत्र को बहा ले गया, मेरा पुत्र डूब गया समुद्र में। तो उसी मरे हुए पुत्र को ला दो, ये गुरुदक्षिणा है। भगवान से साधारण गुरुदक्षिणा नहीं मांगी जा सकती है, भगवान से उतनी ही बड़ी गुरुदक्षिणा मांगे, बच्चे को जिला दीजिए, लाइए। तो दोनों भाई संदीपनी गुरु के आश्रम से निकले और समुद्र में, समुद्र के तट पर गए और छलांग मारे समुद्र में। समुद्र में चले गए तो वहाँ एक समुद्र मूर्तिमान प्रकट हो गया और कहा कि मैं नहीं लिया हूँ उस बच्चे को। वो एक पंचजन राक्षस है, असुर है, वही मेरी लहरों के साथ उस बच्चे को पकड़ लिया। तो फिर भगवान उसको मारे समुद्र में खोज कर, और पंचजन से को मारने से उसके पेट से एक शंख मिला, उससे पंचजन में शंख कहते हैं। बच्चे का पता नहीं लगा, तो फिर भगवान गए जमराज के यहाँ। जमराज जी ने स्वागत किया भगवान का और उस बच्चे को ला करके दिया। तो उसको ले करके वे आए उसी समुद्र के तट पर, प्रकट हुए और गुरु जी को दक्षिणा दिए। ये संदीपनी गुरु जी अपने बच्चे को पाकर प्रसन्न हुए और बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए। तो इस संवाद को जब माता देवकी ने सुना कि मरे हुए गुरु पुत्रों को ला दिया है तो हमारे भी पुत्रों को ला सकता है, तो भगवान से माता देवकी ने कहा कि बेटा अपने बड़े भाइयों को ला दो, मैं देखना चाहती हूँ। तो भगवान ला दिए और उनको माता देवकी ने दूध पिलाया। और जो असली पुत्र रत्न आठवां, वो तो 11 वर्ष के बाद मथुरा चला ही गया, और बलराम जी तो वहीं जन्मे थे। ये दोनों भाई देवकी के आनंद के कारण हुए। तो नंद बाबा के मुख से निकल रहा है कि अदृष्ट कारण है, तो यही मिलाता है किसी को, यही बिछड़ा देता है। तो आप चिंता मत कीजिए, एक दिन आपका वो बिछड़ा हुआ पुत्र मिलेगा। जो इस रहस्य को जान जाता है वो मोह नहीं करता, सोच नहीं करता है। बहुत दुख की बात थी कि वसुदेव जी की पत्नी कंस के डर से मथुरा से बाहर रहती थी, रोहिणी जी। कंस जब देवकी के पुत्रों को मारने लगा तो भय हो गया वसुदेव जी की सभी पत्नियों को कि हमारे पुत्र को भी मारेगा। क्योंकि वो दुष्ट आत्मा था, कुछ भी कर सकता था, इसीलिए पत्नियां वसुदेव जी की अपने घर नहीं रहती थी, अपने मित्रों के यहाँ, भाई के यहाँ इधर उधर छिप कर गुजारा करती थी। जो कोई महावन में रह रही है, कोई और कहीं रह रही है, और सबसे भारी दुख है वसुदेव जी को कि रोहिणी का पुत्र अभी हमसे दूर है, मथुरा में रखना ठीक नहीं था, नहीं तो कंस बाहर सकता था। और देवकी का अंतिम पुत्र हुआ उसको भी पहुंचाया है नंद बाबा के गांव में। बताइए तुरंत का जन्मा हुआ बच्चा उसको कैसे प्यार से पूछना चाहिए, लेकिन वसुदेव जी दूसरे के घर पहुंचाया है, तो चिंता तो रहती थी कि क्या होगा, बच्चा जिएगा नहीं जिएगा, तो चिंता में थे। तो वही नंद महाराज से पूछे, कचित पसव्यम विरजम निरजम भूरियम्बु तृण विरुदम, आप जहाँ रह रहे हैं जिस महावन में, तो वहाँ खूब पानी है ना, घास है ना, लताएं हैं ना, अर्थात उनके पूछने का आशय था कि जब घास खूब होगी, पानी होगा, तो गौएं घास चरती होंगी, खूब अच्छा दूध देती होंगी, स्वस्थ रहती होंगी, तो निश्चित है कि उन गौओं का दूध मिलने से मेरा बच्चा भी सुखी होगा। इस तरह से बच्चे के विषय में इनडायरेक्ट पूछ रहे हैं। आप जिस महावन में गोकुल में रहते हैं वहाँ खूब घास है ना और खूब पानी है ना निर्मल, आपकी गौएं स्वस्थ हैं ना, और वसुदेव जी ने यह भी अंत में पूछा कि मेरा पुत्र अपनी माँ के साथ अर्थात श्री रोहिणी के साथ ठीक से है ना, वो तो आपको ही अपना पिता मानता होगा। तातम भवंतम मनवाना, श्री बलराम जी चूंकि गोकुल में ही जन्मे, वहीं पर बाल लीला किए, तो देखे भी नहीं अपने पिता को वसुदेव जी को, तो वे नंद बाबा को ही अपना पिता मानते होंगे। तातम भवंतम मन माने, ओ बेचारा बच्चा क्या जानता है कि हमारा पापा मथुरा के कारागृह में है, वो तो आपको ही अपना पापा मानता होगा। तो वो ठीक से है ना, और आप भी महावन में है ना कि कहीं इधर उधर चले गए। सह मात्रा, अपनी माँ के साथ मेरा बेटा ठीक से है ना, कृष्ण को अपना बेटा नहीं कह रहे हैं, ऐसा नहीं पूछ सकते। कृष्ण को वे कह रहे हैं कि आपको वृद्धावस्था में पुत्र प्राप्त हुआ है। वसुदेव जी नंद बाबा को कृष्ण का पिता कह रहे हैं, नंद बाबा कृष्ण के वास्तविक पिता नहीं थे, पोषक पिता थे, फोस्टर फादर, पालन किए थे। प्रकट देखा जाता है शास्त्रों में कि नंद महाराज के पास वसुदेव जी अपने पुत्र को पहुंचाया है। जन्म तो देवकी से हुआ और पालन माँ यशोदा ने किया। ये भागवत में प्रश्न है कि कस्मान मुकुंदो भगवान पितुर गेहाद ब्रजन गता। महाराज परीक्षित पूछते हैं भगवान मुकुंद पिता के घर को छोड़ करके ब्रज में क्यों गए, गोकुल में क्यों गए। इस अवतार में भगवान ने जहाँ जन्म लिया वहाँ वे नहीं रहे, मथुरा अपने पिता का घर छोड़ करके और जंगल में अहीरों की बस्ती में चले गए। क्यों? कोई कहे कि कंस के भय से, तो नहीं। परीक्षित महाराज कह रहे हैं भगवान हैं, उनको कंस से कोई भय नहीं था, विशेष काम के लिए गए होंगे। विशेष काम क्या था? यहाँ मथुरा में उतना दूध दही माखन ये सब नहीं मिलता, तो माखन खाने के लिए, दूध पीने के लिए, दही खाने के लिए ब्रज में चला गया जहाँ गौएं बहुत रहती हैं। और वास्तव में सही उत्तर है, भगवान प्रेममय लीला करने के लिए, माखन चुराने के लिए, दही चुराने के लिए, दूध पीने के लिए चले गए। मथुरा में ये सब लीलाएं नहीं कर सकते थे जो लीला उन्होंने किया ब्रज में। एक दिन माँ यशोदा दही मथ रही थी, तो भोर में ही कृष्ण की नींद टूट गई। यशोदा गीत गा रही थी, दही मथ रही थी, तो कृष्ण उठ गए और जा करके माँ को रोक दिए, दही मंथन पकड़ लिए, मंथन दंड। अब यशोदा ने देखा कि ये बच्चा आ करके रोक रहा है और कृष्ण कह रहे थे मैं दूध पीऊँगा, दूध पीऊँगा, रो रहे थे, हमको बहुत भूख लगी है। तो माँ यशोदा ने मथना रोक दिया और कृष्ण को गोद में उठाकर दूध पिलाने लगी, अपने छाती का दूध। कृष्ण पी रहे थे, उनको तृप्ति नहीं हो रही थी, पीते जा रहे थे और माता यशोदा का दूध कम नहीं हो रहा था। दूध में और कृष्ण में होड़ लग गई, कौन तृप्त होता है? और माता का दूध खत्म नहीं हो रहा था, वो तो स्पिरिचुअल गोलोक का दूध है और भगवान प्रेम के भूखे हैं, वे तृप्त नहीं हो रहे थे। काम तो रुक गया था, मंथन रुक गया और दूध पी रहे थे कृष्ण। पीते पीते बहुत देर हो गई, तो उधर अंगीठी पर रखा हुआ दूध उबालने लगा, उफान आ गया। तो माँ यशोदा ने देखा कि दूध में उफान आ गया है, ये अति दग्ध हो गया है, दूध को उतार देना चाहिए। वो भी कृष्ण के लिए ही औंटा जा रहा था दूध। तो कृष्ण पर ध्यान नहीं दिया माँ यशोदा ने, उनको गोद से उतार करके जमीन पर रख दिया और दूध उतारने चली गई। तो इससे कृष्ण का क्रोध बहुत बढ़ गया। ये विचार करने लगा, छोटे से बच्चा विचार करने लगा कि हमारा कोई आदर नहीं है, हमको छुड़ा करके जमीन पर रख दिया और जा रही है दूध बचाने के लिए। इतना कंजूस हो गई, दूध बचाने के लिए जा रहे हैं, हमारा आदर नहीं कर रही है, हमारा अपमान कर रही है, हमारे भूख की परवाह न करके दूध उतारने चली गई। इससे क्रोध आ गया, वे क्रोध से दही का मटका जो मथा जा रहा था उसको फोड़ दिए। जब माता उधर दूध उतारने गई तो इधर क्रोध से दही का मटका फोड़ दिया। गुरुवायुर में एक भक्त हो गए हैं नारायण भट्ट त्री। नारायण भट्ट जी ने लिखा है नारायणियम में कि भगवान को क्रोध आया, वो मंथन दंड से ही फोड़ दिए मटका। और सुखदेव गोस्वामी कहेंगे पत्थर से फोड़े, उसके पेंदी में छेद किए। तो यही बात नारायण भट्टी लिखे थे। और प्रत्येक दशक को दस श्लोक को वे भगवान को सुनाया करते थे। गुरुवायुर में भगवान कृष्ण हैं तो उनको सुनाया करते थे। जो गलती होती थी तो भगवान स्वयं करेक्शन करते थे और ठीक होने पर सही करते थे, ठीक है। एक दिन जब उखल बंधन की लीला वे लिख कर ले गए, भगवान को सुनाए, तो इस श्लोक को सुन करके भगवान ने कहा कि नहीं, ये गलत है, मैं पत्थर से नहीं फोड़ा था मटका, मैं मंथन दंड से फोड़ा था। तो नारायण भट्ट ने पूछा क्यों आप ऐसा किए थे, तो भगवान ने कहा कि मैं इसलिए मंथन दंड से फोड़ा था कि माँ को भ्रम हो जाए कि मथानी लगने से ही फूटा है, हमारी गलती है, मंथन दंड से इसीलिए मैं फोड़ा कि माता यशोदा को भ्रम हो जाए कि हमसे फूटा है। तो फिर नारायण भट्ट जी ने पूछा तो आप भागे क्यों, भागा इसलिए कि फोड़ा तो मैं ही था, इसलिए डर हो गया इसीलिए भागा था। ये भगवान ने स्वयं कहा, इसीलिए उखल बंधन में लिखा गया है, वो करेक्शन करके भगवान ने कहा मैं मंथन दंड से फोड़ा था, इसीलिए नारायण भट्ट जी लिखे मंथन दंड से फोड़े। भक्तों के साथ भगवान इतना फ्रैंक बातचीत करते रहते हैं। तो यही सब लीला करने के लिए वे ब्रज में गए थे। और जिस दिन उखल बंधन हुआ कृष्ण बहुत रोए। बाद में ऐसी घटना हुई कि दो वृक्ष गिर पड़े। वृक्ष गिरे थे कृष्ण के ही कारण, वही गिराए थे, लेकिन ऐसे भयभीत थे, ऐसा लग रहा था कि मैं भागने के कारण योग्य नहीं था और वृक्ष गिरने से बच गया, भगवान की कृपा है, नारायण की कृपा है। रो रहे और माता यशोदा के पास की ओर नहीं देख रहे थे। अब संकल्प कर लिए कि अब इसके गोद में नहीं जाना है, इसका दूध नहीं पीना है। नंद बाबा रस्सी खोले तो नंद बाबा की गोद में चले गए और कह रहे थे कि अब जसोदा की गोद में नहीं जाएंगे। तो नंद बाबा कहे ठीक है, लेकिन कुछ ही देर के बाद माँ जसोदा आई तो उसके गोद में चढ़ करके कहते हैं मैं पीऊँगा दूध, पीऊँगा दूध, पीऊँगा, मुझे बहुत भूख है। फिर वे दूध पीने लगे, क्योंकि जसोदा प्रेम की मूर्ति है, स्नेह है भगवान के प्रति। तो भगवान बहुत दूध पिए हैं ब्रज में, केवल जसोदा का ही दूध नहीं, सभी गोपियों का दूध पिए हैं। जो मातृभाव वाली गोपियाँ थी उनका पुत्र बन करके पिए, गौओं का दूध उनका बछड़ा बन करके पिए। ब्रह्मा जी कहते हैं खूब पिए, खूब पिए दूध, खूब पिए। और केवल दूध से तृप्ति नहीं होती थी तो फिर दही चुराते थे, माखन चुराते थे। यही सब लीला करने के लिए वो ब्रज में गए। इस प्रकार वसुदेव जी से नंद बाबा का संगम हुआ तो नंद बाबा उनको सांत्वना दे रहे हैं। सभी कर्म के बस में हैं, प्रारब्ध के बस में हैं, कब किसके जीवन में क्या होगा कुछ पता नहीं है, अदृष्ट। तो किसी भी स्थिति में शोक नहीं करना चाहिए। एक और बहुत अर्जेंट बात कहे वसुदेव जी, करो वही वार्षिको दत्तो, आपने कंस को वार्षिक कर दे दिया और हमसे भेंट हो गई, हम लोगों से भेंट भी हो गई, अब आप यहाँ बहुत देर मत रहिए, नेह स्थेयम बहुत इच्छा, बहुत दिन यहाँ नहीं रुकना चाहिए, आप अपने घर जल्दी से जल्दी जाइए। क्यों? क्योंकि संतिम पाताश्च गोकुल है, गोकुल में बहुत उत्पात हो रहे हैं। वसुदेव जी को पता था कि अब पूतना पहुंची होगी गोकुल। कंस के यहाँ क्या मीटिंग होती थी और क्या योजना बनती थी ये सब वसुदेव जी पता लगा लेते थे गुप्त रूप से। तो नंद बाबा से कह रहे हैं आप यहाँ मत रुकिए, आप ब्रज के राजा हैं, राजा को बहुत बुद्धि होती है, तो आप वहाँ रहेंगे तो सबकी रक्षा होगी, आप मथुरा मत रुकिए, आप लौट जाइए गोकुल। अंततः वसुदेव जी को चिंता थी कि हमारे पुत्र को कोई क्षति ना हो, पुतना गई है ब्रज में, पता नहीं क्या करेगी, इसीलिए वे नंद बाबा को भेज रहे हैं आप जाइए मत रुकिए। तो वसुदेव जी की बात मिथ्या नहीं हो सकती है, यह विचार करके नंद बाबा तुरंत अपने बैलगाड़ी को ठीक किए, बैलों को जोते और बहुत तीव्र गति से ब्रज की ओर चल दिए। जय श्री लक्ष्मण।
बाद में हमको आप सबको इन्फॉर्म करेंगे।